ओम शांति। परम आदरणीय दादी जी, आपने प्रकृति को अधीन करके किस तरह से बाबा के दिन भी आई थी। बाबा ही जैसे चला रहा है और आज भी, यद्यपि दादी जी के शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी बाबा के बच्चे इतने आए हुए हैं, उनको मैं जाकर मिलूं, उनको देखूं, और बाबा का स्नेह जो है वो कितना साकार रूप में दादी जी के द्वारा हमको अनुभव हो रहा है, वो हम सब अपने अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। कितना जैसे कि एक असंभव सी बात वो दादी जी संभव करके दिखा रही हैं, और हम सब के लिए शरीर जो कि सबसे समीप की आत्मा की इस साकार लोक में कनेक्ट करने वाली भारी चीज है, जिसके द्वारा ही आत्मा इस पिंजरे में है, कलयुग में तो ऐसे कहेंगे, तो बाबा दादी जी के द्वारा हमको दिखा रहे हैं कि आत्मा ही अलौकिक शक्ति है और हम सब भी ब्राह्मण अनुभव करते हैं कि अलौकिक रूप में जब हम होते हैं तो आत्मा मालिक बन के किसी भी प्रकार से इस शरीर को चला सकती है, उसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि शरीर की कितनी आयु, लेकिन जो प्रेम है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, रूहानी प्रेम, तो दादी जी कमरे में है और उनका जो दिल है वो हॉल में है। कुछ बाबा से एक दिन पहले भी जब मैं यहाँ क्लास कराने आया था तो दादी जी उसके बाद क्लास कराते हैं सिस्टम के अनुसार, पर उस दिन इनका शरीर ऐसा था तो भी मुझे कहा आओ, और सारा 22,000 आत्माएं वहां हॉल में हैं और मैं यहाँ हूँ, तो दादी जी ने कहा बैठो और शांति में बैठो, मैं जो कुछ बाबा के बच्चों को सुनाना चाहती हूँ वो सुनो और फिर जाके क्लास में बताओ। तो मैं बैठ गया तो दादी जी ने बहुत पावरफुल बाबा की दृष्टि दी। फिर हंसा बहन ने कहा दादी ये तो क्लास करा के आ चुका है, ये अब कैसे जाएगा क्लास में। तो दादी जी ने कहा उससे अगला कौन क्लास कराने वाला है। तो हंसा बहन ने कहा राजू भाई है। अच्छा उसको बुलाओ। पर हंसा बहन ने कहा उसकी क्लास तो देर से है, बाद में है। यानी इतनी जबरदस्त खेंच थी कि मैं खुद दादी जी के कमरे में इतनी लाइट महसूस कर रहा था जितनी मैंने कभी नहीं की। अब मुझे इतनी शक्ति मिली के। और उसके बाद پیارے باپ دادا نے بھی اسی لہر کی مرلی ہم کو سنائی کہ بچے شریری طور پہ تو بچے بڑھتے جاتے ہیں اور شریری طور پہ کچھ ملن کریں بھی تو بابا نے شبد یوز کیا ہنگامہ ہو جائے کہ 22,000 بھائی بہنوں کو اگر کیول کھڑے کیا جائے اور بٹھایا جائے تو بھی کتنا ہنگامہ ہو جاتا ہے. تو پیارے بابا نے سنے ملن کی, دل کے ملن کی, کہ دل سے ملو اب, اور دل سے ملنے والوں کو دل میں رسپانس بابا کا ملے گا. تو ساری بابا نے ودھی ہی ملنے کی چینج کر دی. اور سب سے زیادہ رومانچک, سب سے زیادہ رومانچک تو وہ بات تھی جب اویکت بابا نے کہا کہ سارے ہال کی دیواریں دیکھو اور اس پر بچوں نے کس پرکار سے اپنے پیار کے شبد, میرا بابا, پیارا بابا, میٹھا بابا, سب سارے ہال کی سبھی دیواریں بھری ہوئی ہیں اور اپنے اپنے ڈیزائن سے, اپنے اپنے طریقے سے سب نے اپنے دل کی جو بات ہے اس کو یادگار روپ میں لکھ دیا ہے. تو جیسے کبھی لوکک میں بھی کئی ویکتی مندروں میں جاتے ہیں, پہاڑوں پر جاتے ہیں, تو اپنا نام لکھ کے آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, کوئی پیڑ پر لکھ دیتا ہے, کوئی بینچ پر لکھ دیتا ہے, تو ان کا یادگار ہوتا ہے. پھر کچھ ورشوں کے بعد بھی جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرا, میں نے یہاں لکھا تھا. تو ساری مرلی ہی یہ تھی کہ یاد کی بجائے یادگار, کیونکہ جو یادگار ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے. جیسے بھکتی مارگ میں بابا کے سارے ہی چرتروں کے یادگار بنے, دشہرا بنا. اب بابا کہتے ہیں راون کا جنم دن نہیں مناتے, راون کا صرف انتم دن ہی مناتے ہیں کیونکہ دکھ دینے والا ہے. شیو بابا کی جینتی مناتے ہیں, اوترن مناتے ہیں. تو نام لیتے ہی دشہرا تو سب کے من میں آ جاتا ہے کہ کون سا یادگار ہے. اسی پرکار سے شیو جینتی کہیں تو بھی اس دن کا وشیش مہتو ہے. بابا اس دن اوترت ہوئے تھے کلب پہلے, اب بھی ہوئے ہیں, تو نام لینے سے ہی یاد ہو جاتا ہے. تو بابا نے اسی پرکار کہا کہ میرے یہ اتنے برہمن بچے جو ہیں وہ سارے ہی یادگار بنانے والے ہیں, اتہاس کو رچنے والے ہیں, اتہاس کو پڑھنے والے نہیں ہیں. ہمارا اتہاس دواپر سے پھر شاستروں کے روپ میں پڑھا جاتا ہے, پر اس لیے ہر بچہ ہمارے جیون میں کوئی نہ کوئی ایسی وشیش گھٹنا ہوتی ہے جو پھر ہمیں یاد رہتی ہے. تو بابا کہتے ہیں ہر پل کو, اپنے ہر وچار کو ایسا بنائیں جو کوئی ٹی وی پر دیکھے تو وچاروں کو اگر درش کے روپ میں لائے تو جیسے راجو بھائی نے لکھا ہے, پہلا پہلا دھارنا کا پوائنٹ کہ اگر ویکت استھتی بنانی ہے تو شبھ بھاو اور شبھ بھاونا سب کے لیے ہمارے من میں صدا ہونی چاہیے. اب یہ بہت اچھی دھارنا کی بات ہے. بابا بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم کیول یہی سوچ لیں کہ سب کے لیے شبھ بھاو اور شبھ بھاونا رکھنا ہے تو ہمارے من میں تو شبھ ہی شبھ ہو جائے گا, کیونکہ جو من میں آئے گا. تو بابا نے یہی کہا ہے کہ دل سے کوئی بھی بات کرو تو دل سے کرو, دل کی گہرائی سے کرو, آدھے من سے نہیں کرو. ऊपर ऊपर से नहीं करो और केवल ड्यूटी समझ कर नहीं करो। तो इसलिए अगर हम दिल से, जैसे भगवान को लोग याद करते हैं, मेरे पर दया करो, कृपा करो, मर्सी करो, क्षमा करो, तो हम दिल से दिल में रखें कि हम बाबा के यहाँ पर साकार में दूत हैं और हम सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, तो शुभ भावना की बड़ी शक्ति है। अभी दूसरे की कमजोरी देखने से अशुभ अशुभ कमी कमी दिल में आ जाती है। तो बाबा ने कहा नहीं, यादगार बनाना है। तो जो राजू भाई ने एक पॉइंट लिखा है, रोज का भी आप एक धारण करें कि शुभ भाव और शुभ भावना रखो, और यहाँ तक रखो कि कोई अशुभ भाव से आए भी आपकी तरफ, उसका भाव आए, उसको आप शुभ में परिवर्तित कर दो। अर्थात कि केवल अपने अंदर से कमजोरी को नहीं खत्म करना है, बल्कि दूसरों की कमजोरी को भी खत्म करने की बहुत इजी मूल मंत्र है कि शुभ भाव और शुभ भावना रखो। तो बाबा ने यही कहा कि तुमको होमवर्क भी मिल गया है। देखो, बाबा ने मुरली में एक तो जो बच्चे उस दिन सामने थे, थोड़े से थे, उसमें हम भी थे और भी बहुत सारे थे, कि कैसे साकार में मिलते मिलते बाबा, किसी को पता भी नहीं था, ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि साकार में मिलते मिलते बाबा अचानक अव्यक्त हो जाएगा। अब बाबा अव्यक्त हो गए तो बाबा तो हमें अव्यक्त बनाने के लिए हुए, लेकिन टेम्परेरीली तो अव्यक्त हो गए। फिर जब बाबा आए तो अव्यक्त रूप में, और अव्यक्त रूप से मिलन का सिस्टम शुरू हुआ कि कहां 5 दिन पहले तक बाबा साकार में मिलते थे और वही बाबा अब अव्यक्त में मिल रहे हैं बाप दादा, तो वो किसी को भूलता नहीं है। और जो नए बच्चे आए हैं उनको भी बाबा ने, जैसे वो सारी जो इतिहास था, जैसे किसी को कहानी सुनाते हैं या चित्र दिखाते हैं, वो सारा दिखाया। इसी को भगवान के चरित्र कहते हैं। मुरली में बाबा ने कई बार लीला शब्द का भी प्रयोग किया है कि देखो भगवान की लीलाएं समय प्रति समय होती रही हैं। तो वो जो यादगार बना, इसी प्रकार से बाबा कहते हैं वो यादगार भूलता नहीं। और उस दिन की जो हमारी स्थिति थी, कैसा हमारा मन था, कैसे हमारी आंखें थी, कैसे हमारे भाव थे, सारे सारे बच्चों के, उसको और आगे बढ़ाना है तो ये हमारा होमवर्क है। ऐसे नहीं कि बाबा रूटीन में आए, बाबा से मिले, बाबा कहते प्रोग्रेस क्या किया, तो वो हमको आसान तरीका प्रोग्रेस का बताया है कि दिल में अनुभव करो। तो दिल से करोगे तो आपको कहीं भी बैठे होगे तो अनुभव होगा, स्थूल में नहीं। क्योंकि कई बच्चे बाबा के जब इतने संगठन में आते हैं, वो कुर्सी आगे करने के लिए यत्न करते हैं, आगे बैठने के लिए यत्न करते हैं। बाबा ने कहा इस स्थूल का बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आते हैं किस लिए, कि अपने दिल की बातें बाबा को सुनाने के लिए। अब सारे बच्चे अगर बाबा के दिल की बातें सुनाने लगे तो संभव नहीं है। तो बाबा कहते हैं दिल की बात दिल में तुरंत पहुंच जाती है, जितनी गहरे दिल से करोगे पहुंच जाएगी। और बाबा ने कहा आते हैं अपने दिल की बातें बाबा से करते हैं, रू रिहान करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बाबा आए हुए हैं इस लोक में, तो फिर उनको रिस्पॉन्ड भी मिलता है, फिर लेकर चले जाते हैं। तो ये विधि सूक्ष्म रूप से हमको अपनानी है। और दिल से, अगर दिल से हम सब कुछ दिल से करने लग जाए तो फिर क्या होगा, बाबा कहते हड्डी मांस की आवश्यकता ही नहीं है। कई कहते ना यज्ञ में हड्डी हड्डी दी, तो हड्डी मांस होगा तो आप हड्डी यूज करेंगे, लेकिन फरिश्ता जो होता है वो हड्डी तो उसमें होता ही नहीं, तो इसलिए अलौकिक हमारा ये संगम युग का जन्म अलौकिक है। हमने मर्जीवा जन्म लिया है, हमारे माता पिता भी अलौकिक हैं, और ऊपर में जब बाबा कहते हैं अमृत वेले महफिल लगती है, अलौकिक लगती है, और किसी को भी अनुभूति करनी हो तो अलौकिक होती है। साकार में बाबा कहा करते थे कि अभी तो शरीर बाबा शरीर में है, कोई पतित आत्मा भी मिल लेती है, कभी गवर्नमेंट के ऑफिसर आ जाते हैं उनसे मिलना पड़ता है, लेकिन ऐसा दिन आएगा जब कोई भी पतित आत्मा कलयुगी आत्मा बाबा से मिल नहीं सकेगी, ते भान वाली आत्मा भी मिल नहीं सकेगी, क्योंकि बाबा भी आत्मा है, परमपिता भी आत्मा है। तो इसलिए हमको अलौकिक रूप से मिलन मिलाना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम मधुबन में ही मिलेंगे, आगे आगे अपने स्थान पर भी हमको वही अनुभूति होनी है। समय नजदीक आ रहा है, इसलिए हमको अलौकिक मिलन करना है। अब मैं समझता हूँ कि दादी जी थोड़े से दो शब्द और बोल दें, नहीं तो अच्छा, दादी जी से हम दृष्टि लेते हैं और अच्छे तरह से, बहुत हमें खुशी की बात है कि देखो ये दिन भी यादगार बन गया, हर कल्प में इस दिन दादी जी हमारे पास आएंगी, इस यादगार को भी आप याद रखेंगे ना, जहां आप जा रहे हैं बहुत आपको ताकत मिलेगी। ओम शांति।